नमस्करोमि मित्रगणः, स्वागतं च व्याहरामि रेडियो मधुबनस्य श्राव्यमञ्चे। अहं लीना मेहेन्दळे, अद्य पठामि संस्कृतम् इति कार्यक्रमे पण्डित जयदेवस्य दशावतारम् इति काव्यं पठामि। शृण्वन्तु भवन्तः सर्वे। अर्थात् हे मित्रगण, नमस्कार है रेडियो मधुबन के श्रव्य मंच से। मैं लीना मेहेन्दळे आज अपने पठामि संस्कृतम कार्यक्रम में पंडित जयदेव का रचा हुआ दशावतार इस काव्य की पढ़ाई करूंगी, या कहें कि प्रस्तुति करूंगी। सुनिए यह काव्य। मित्रों, पंडित जयदेव के इस काव्य की एक विशेषता यह है कि इसका छंद बहुत ही मधुर परंतु बहुत ही अलग तरह का है, और इसकी रचना भी अत्यंत मधुर है। तो आइए सुनते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं विहित वहित्र चरित्रमखेदं केशव धृतमीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। वैसे यह काव्य समझने में बहुत सरल है। कवि कहता है, हे केशव, प्रलय पयोधि जले, पय अर्थात पानी और पयोधि अर्थात पानी का विशाल भंडार अर्थात समुद्र। तो प्रलय पयोधि जले, समुद्र में जिस समय प्रलय आ रहा था और सब तरफ पानी ही पानी हो गया था, तो उस पानी में जले, यह सप्तमी विभक्ति हो गई जल शब्द की। और यहाँ पर कवि ने मनु की कथा का संदर्भ लिया है। कथा यूँ है कि सम्राट मनु को पहले एक छोटी मछली कहीं दिखी, और उस मछली ने आग्रह किया कि हे सम्राट, तुम मुझे बचाने के लिए किसी सुयोग्य स्थान पर रखो। तो मनु ने उसे एक छोटे से अच्छे तालाब में रख दिया। कुछ दिनों बाद वह मछली बड़ी हो गई तो उसने आग्रह किया कि मुझे किसी बड़े सरोवर में रखो। तो मनु ने उसे छोटे तालाब से निकाल करके बड़े सरोवर में रखा। कुछ दिनों में मछली और भी बड़ी हो गई तो उसने कहा कि हे राजन, तुम मुझे नदी में रखो। और कुछ और दिनों में वह मछली एक विराट मत्स्य का रूप धारण कर चुकी थी। तो उस मत्स्य ने राजा से कहा कि अब मैं स्वयं तैर करके समुद्र में जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि निकट भविष्य में ही कभी प्रलय आने वाला है, और उस प्रलय में सारा संसार डूब जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। तुम अभी से एक बृहत नौका, एक बहुत बड़ी नौका तैयार रखो, और उसमें सारे पेड़ पौधों के बीज और छोटे बड़े जितने भी जानवर हैं अलग अलग प्रजातियों के, वो सारे जानवर, और तुम अपने साथ जिन जिन मनुष्यों को बचाना चाहते हो, जिन जिन वस्तुओं को बचाना चाहते हो, वे सारे उस नौका में रखने का प्रबंध कर लो। जब प्रलय आएगा तो उस नौका में सारे लोग बैठ करके समुद्र में उतर जाना, और मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ आ जाऊँगा। तो कथा यूँ है कि मनु ने जिस प्रकार अपने साथ कई ऋषि मुनियों को, कई स्त्री पुरुष बच्चों को और जानवरों की अनेकानेक प्रजातियों को, इसी प्रकार पेड़ पौधों के बीजों को अपने साथ रख लिया था, उसी प्रकार उसने वेदों को भी अपने साथ रखा था ताकि इस प्रलय में वे भी बच जाएं, नष्ट ना हों। तो उसी के संदर्भ में कवि जयदेव कहता है, धृतवानसि वेदम, धृतवान, तुमने वेदों को भी संभाल करके रख लिया, बचा लिया, और विहित वहित्र चरित्रम अखेदम, इसका क्या अर्थ है? तो वहित्र का अर्थ हुआ नाव, नौका। तो जिस प्रकार नौका का चरित्र है, उसका गुण है कि वह पानी के ऊपर तैरती है, अनायास तैरती है, उसी प्रकार तुमने भी अखेदम अर्थात अनायास, बिना किसी परिश्रम के उस नौका को पकड़ करके उसमें स्थित वेदों का उद्धार किया। आगे केशव धृतमीन शरीर, यहाँ पर संबोधन है केशव के लिए, हे केशव, और दूसरा संबोधन है धृतमीन शरीर, यह एक सामासिक शब्द है। कैसा केशव? तो जिसने मीन का शरीर धारण किया हो, एक मछली का शरीर धारण किया हो, ऐसा केशव। तो हे केशव, हे ध्रुतमीन शरीर, तुमने इस प्रकार वेदों को धारण कर लिया और उन्हें बचा लिया, इसलिए तुम्हारी जय हो। जय जगदीश हरे, हे हरे, हे जगदीश, तुम्हारी जय हो। अगले श्लोक में कवि जयदेव कहते हैं, क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव ने केशव के कुर्मावतार का वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे, पृष्ठ अर्थात पीठ, तव पृष्ठे तुम्हारी पीठ पर, क्षिति ही अर्थात पृथ्वी, और अति विपुलतरे तुम्हारी पीठ कैसी है तो उस पृथ्वी से भी विशाल है, और इस पीठ पर तुमने पृथ्वी को स्थान दिया, पृथ्वी को रख लिया, या यों कहे कि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाले मंदार पर्वत को रख लिया, जो कि देवता और असुरों के द्वारा जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदार पर्वत को ही रवि बना लिया गया था, मथनी बना लिया गया था, जिससे समुद्र को मथा जा सके। तो ऐसे पृथ्वी को तुमने अपनी पीठ पर स्थान दिया ताकि उसकी मथनी बन सके, और इस कारण तुम्हारी पीठ पर व्रण बन गए, थोड़े से जख्म हो गए, और उन जख्मों का व्रण अर्थात उन जख्मों की निशानी तुम्हारी पीठ पर बनी है, इसीलिए कछुए के पीठ पर हमें जाल जाल सा दिखाई पड़ता है। तो धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे, ये फिर एक पूरा लंबा सामासिक शब्द हो गया, और धरणी को धारण करने के कारण जिसके पीठ पर निशान बन गए हों, ऐसा केशव, ऐसा कृष्ण। तो केशव ध्रुत कच्छप रूप, यहाँ फिर केशव संबोधन हो गया और ध्रुत कच्छप रूप यह भी संबोधन हो गया, जिसने कछुए का शरीर धारण किया हो, कछुए का रूपधारी केशव। जय जगदीश हरे, अर्थात हे जगदीश, हे हरे, तुम्हारी जय हो। तीसरा वराह अवतार है, उसके विषय में कवि कहता है, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कवि वर्णन करता है वराह अवतार के विषय में। कवि कहता है कि वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, दशन अर्थात दांत, तो तुम्हारे दांतों के ऊपर तुमने पृथ्वी को उठा लिया, तो धरणी भी तुम्हारे दांतों के ऊपर आराम से बैठ गई। किस प्रकार? शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, जिस प्रकार चंद्रमा का जो कलंक है वह सदा ही उसके साथ दिखाई पड़ता है, मानो वह चंद्रमा में निमग्न हो, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी तुम्हारे दांतों के ऊपर निमग्न हो करके आराम से रुकी रही। तो ऐसे शूकर रूपधारी केशव, केशव ध्रुत शूकर रूप, तो ऐसे वराह रूपधारी केशव तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी जय हो। तो वराह अवतार की भी कथा है कि हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य था जिसने पृथ्वी को धक्का देकर समुद्र के अंदर गिरा दिया, तो उस समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया और उसे समुद्र से बाहर निकाला, और बाद में हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके उसे परास्त किया और उसका वध किया, और इस प्रकार पृथ्वी को हिरण्याक्ष की क्रूरता से, हिरण्याक्ष के दुशासन से और दुष्कर्मों से बचाया। तो ऐसे केशव की जय हो। तो मित्रों, हमारा समय समाप्त हो चला, हम पठामी संस्कृतम कार्यक्रम को आज यहाँ समाप्त करेंगे। अगले रविवार को हम बाकी श्लोकों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार जयदेव ने दशावतारों का वर्णन किया है। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।